अच्छा, और जहां तक भगनी के वध की बात है, तो ऐसा विकर्म आप करेंगे, ऐसा पाप करेंगे, तो इसके चलते भविष्य में आपको और ज्यादा देह बिगड़ने, अधम देह मिलने की आशंका रहेगी, आपकी अधोगति होगी। आखिर देह जाएगा ही और दूसरा देह मिलेगा ही, और सभी देह एक समान प्रिय हैं। अतः भगनी वध रूप विकर्म करके आप अपने भविष्य को और अंधकार में मत डालिए, छोड़ दीजिए इसको, जो होने वाला है होगा, कोई बात। ये सिद्धांत इस श्लोक में व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन एक दृष्टांत द्वारा दृष्टांत देते हैं। ज्योतिर्जथाई वो दक पार्थिवे सोदह समीर वेगानुगतम विभाव्य एवं सोमाया रचते सशव पुमान गुणे सुरागानुगतो विमोहियती। तो सिद्धांत बहुत ही सुंदर है दृष्टांत। अदह ज्योति, यह ज्योति श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, तो कंस की स्थिति को बता रहे हैं, वसुदेव जी शिक्षा दे रहे हैं। तो उस समय दिन था, तो अदह ज्योति का अर्थ है यह ज्योति। वसुदेव जी कंस को ऊपर दिखाकर कह रहे हैं अदह ज्योति, अथवा कोई बिजली का बल्ब जल रहा होगा उसको दिखाकर कह रहे हैं, या चंद्रमा को अदह से रात्रि में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा को भी बताया जाता है अदह ज्योति, यह ज्योति। हम पहले उसको ऐसे समझा लेते हैं, जैसे किसी उदक पार्थिवे से किसी बर्तन में जिसमें जल भरा रहता है या तेल भरा रहता है, उस बर्तन को यदि आप रखिए जमीन पर तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है जल में या तेल में, चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है। ज्योतिर्जथाई उदक पार्थिवेश उदक पार्थिवेश अदह ज्योति, तो चंद्रमा को यदि हम लोग ऊपर देखते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल अस्थिर दिखाई देता है, वो चंचल सकंप नहीं दिखता है, उसमें कंपी नहीं होती है, तो वह बिल्कुल अचल दिखता है। लेकिन जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा जाता है तो वह कांपता हुआ दिखाई देता है, और दीर्घ ह्रस्व वर्तुल कभी गोलाकार कभी टेढ़ा मेढ़ा कभी लंबा कभी गोला कभी झिलमिल झिलमिल करता हुआ दिखाई देता है। ये दृष्टांत बताया जा रहा है, प्रयोगशाला है, श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रयोग दिए गए हैं। प्रतिबिंबित चंद्रमा को या सूर्य को हम लोग देखते हैं कि वह कटा छटा दीर्घ वर्तुल ह्रस्व आदि रूप में दिखाई पड़ रहा है। क्यों ऐसा दिखाई देता है? समीर वेगानुगतम, क्योंकि चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित है, जल जो है वो समीर वेग अनुगतम, समीर चल रहा है जल पर, हवा चल रही है धीरे धीरे, तो हवा के चलने से जल हिलता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता हुआ सकंप दिखता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा वैसा है नहीं। तो यहां पर हम लोग दो विशेषता देखते हैं, एक तो यह देखते हैं कि जल चमक रहा है, लेकिन जल में चमक अपनी नहीं है, जल में जो चमक है चाकचिक्य है वह है चंद्रमा का होता है, चंद्रमा में प्रकाश बहुलता है, प्रकाशित चीज है, इसलिए जल भी प्रकाशित दिखता है, चमकता हुआ दिखता है, जल में अपनी चमक नहीं है। अच्छा, दूसरी क्या विशेषता देखते हैं कि चंद्रमा कटा छटा दिखता है, झिलमिल दिखता है, लंबा इत्यादि दिखता है, चंद्रमा ऐसा नहीं है। तो यह किसका धर्म है जो चंद्रमा में आरोपित करके जीव देखता है? वह धर्म है जल का, जल हिल रहा है, जल कांप रहा है, इसलिए चंद्रमा कांपता हुआ दिखाई देता है। तो जल में चमक नहीं है पर वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और चंद्रमा में कंप नहीं है, छेड़ता नहीं है, हिलता पना नहीं है, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है। क्यों? जल का धर्म चंद्रमा में हम देख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, देह और आत्मा दोनों पर इसको बैठाना होगा, किस तरह से वसुदेव जी समझा रहे हैं। कोई व्यक्ति सोच सकता है क्या इतना देर तक वो समझाते होंगे, ये पहले के लोग बहुत विद्वान थे, कौन से भी वो केवल श्लोक बोलने से समझ गया। हम लोगों को तो पूरा खोल करके समझाना पड़ता है, फिर भी नहीं समझ पाते हैं कुछ लोग। इतना स्टैंडर्ड गिर गया दिमाग का, पढ़ाई का, वैदिक कल्चर का, कि अब लोग बहुत ज्यादा समझाने के बाद तब समझते हैं। तो चंद्रमा को आत्मा स्थानीय समझना चाहिए। आत्मा जो जीव का स्वरूप है अपना, जो हम हैं, वो है चंद्रमा की तरह मान लीजिए, और जो मन है, मन या स्थूल शरीर, वो है जल, जलस्थानीय। तो हम क्या करते हैं कि देह का जो धर्म है, मर जाना, काला होना, मोटा होना, क्षीण होना, दुबला, रोगी, इन धर्मों का आरोप आत्मा पर करते हैं। सोचते हैं आत्मा मर जाएगा, आत्मा काला है, मतलब मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मर जाऊंगा, मुझे बुखार आ गया है, मैं इस परिवार का हूं, मैं उस परिवार का हूं, मैं इसका बंधु हूं, मैं उसका बंधु हूं। इस तरह देह के धर्म है, देह किसी का बंधु है, चाहे देह है, देह तो पंच भौतिक है, वास्तव में कुछ है नहीं, ये तो जड़ वस्तु है, लेकिन देह का ये स्वभाव है, एक दिन बना है, एक दिन बिखर जाएगा, मर जाएगा। देह काला होता है, देह गोरा होता है, देह को में फीवर बढ़ता है, बुखार होता है, देह ठंडा हो जाता है, देह अस्त्र से कटता है, हवा से सूख जाता है। देह के ये धर्म कहे जाते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, सब देह धर्म है। धर्म का अर्थ होता है संस्कृत में स्वभाव, ये देह के सब स्वभाव। देह के स्वभाव को हम आत्मा पर आरोपित करते हैं, हम विचार करते हैं तो सोचते रहते हैं, हाँ एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं बहुत दुबला हो गया हूं। दुबला वो आत्मा नहीं है, वो जैसा है वैसा है। आत्मा ना तो दुबला है ना पतला है, वो जैसा है, भगवान का नित्य पार्षद परम सुंदर जैसा है। लेकिन देह के अनुसार अपने में सोच विचार करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये। अच्छा, ये तो हम देह के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं, ये क्या संगति बैठेगी? जैसे चंद्रमा पर हम लोग जल के धर्म का आरोप करते हैं, जल का संकम सकंप होना हम चंद्रमा में आरोपित करते हैं, और आत्मा के धर्म को देह पर आरोपित करते हैं। आत्मा का क्या धर्म है? चिन्मयता, प्रियता, नित्यता। तो जैसे हम चंद्रमा के धर्म को जल पर आरोपित करते हैं, कहते हैं जल चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, जल नहीं चमक रहा है, जल में अपनी चमक नहीं है। तो हम लोग कभी कभी देह को कहते हैं, कितना सुंदर देह है, हमारा देह प्रिय है, हमारा देह नित्य है, हमारा देह सुखमय है। तो आत्मा का जो धर्म है हम देह में आरोपित करते हैं, और देह का जो जन्म मरण आदि का धर्म है वो आत्मा में आरोपित करते हैं। इस तरह से फंस गए, आरोपित कर लेते। यह अभी उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए है, जैसा मैं शुरू में कहा कि कंस कहा कि राज देह कहां मिलेगा, फिर कंडम देह मिल जाएगा, कुत्सित देह मिलेगा। तो वो कहता नहीं नहीं कोई कुत्सित देह नहीं होगा, जहां आपको वो देह मिलेगा तो आत्मा का धर्म आरोपित करेंगे ही, तो वही देह प्रिय लगेगा। आत्मा नित्य प्रिय है, तो जिस देह में आत्मा जाता है वही देह प्रिय लगने लगता है। तो यह प्रत्यारोप का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए, ना हम गोरा हैं, ना हम काला हैं, ना हम मोटा हैं, ना हम छीन हैं, ना हम बीमार पड़ते हैं, ना हमें खांसी होती है, ना हम भारतीय हैं, ना हम अमेरिकन हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम शूद्र हैं, न हम पशु हैं न पक्षी हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, न हम कैट हैं न डॉग हैं। तो वो बारंबार कहते जाते हैं, आई एम कैट, आई एम डॉग, ये सब सोचना बेकार है। हम ये देह नहीं है, ये देह तो एक दिन बिखर जाएगा, पंचत्व में चला जाएगा, और हम जाएंगे फिर दूसरे देह में, अथवा यदि भजन ठीक से करते हैं तब भगवान के पास जाएंगे। ये जो आरोप है इसको खत्म करना है, देह के धर्म का आरोप आत्मा पर और आत्मा के धर्म का आरोप देह पर करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए, कोई भी शरीर एक समान प्रिय होगा, जिस देह में आत्मा जाएगा वही देह प्रिय होगा, आप चिंता मत कीजिए। और इसके कारण भग्नि वध रूप पाप मत कमाइए, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन कंस जीने के फेर में इतना पड़ा था कि वो नहीं छोड़ा। तब वसुदेव जी ये तो जुक्ति बता रहे थे, इसमें बताने में देखिए पहले साम नीति से उन्होंने काम लिया और साम नीति के बाद जुक्ति दिए। जुक्ति का अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन यहां ज्ञान शब्द नहीं कहेंगे उसको। क्यों? क्योंकि कंस के हितैषी बनकर के उसको युक्ति सिखा रहे हैं कि जब मरना पड़ेगा तो ऐसे मरा जाता है, शरीर और आत्मा की यह स्थिति है, युक्ति बता रहे थे, जुगाड़ या उपाय बता रहे थे कि आप नहीं मरेंगे, ऐसा है वैसा है ये है, ज्ञान देना भी एक युक्ति है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि वसुदेव जी उसको ज्ञान दे रहे थे तो वो सुनता ही नहीं। आप समझ रहे हैं इस बात को, दोनों में अंतर क्या है? क्यों टीकाकार कहते हैं कि वसुदेव जी युक्ति बता रहे हैं? ज्ञान देने का मतलब है कि तब वो ये सोचता है कि वो ये तो गुरु बन गया है, सिखा रहा है। और युक्ति बताना वो मित्र का काम है, हितैषी का काम है। तो मित्र के तरह वसुदेव जी युक्ति बता रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे, आप इस तरह से कीजिए, यह करना युक्त होगा, ठीक होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन देखे कि ये तो मान नहीं रहा है, ज्ञान उसके समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी स्वभाव था पाप करने का, हत्या करने का, इसीलिए अभी भी देवकी का मस्तक काटने के लिए वो तैयार ही थे। अब इतना ज्ञान देने के बाद भी दुराचार छोड़ नहीं रहा था। तो वसुदेव जी भेद नीति से काम ले रहे हैं, भेद नीति, दो प्रकार के वचन बोले, एक दृष्ट भय अदृष्ट भय बता रहे हैं। उन्होंने कहा न तस्मात् कस्यचित् द्रोहम् आचरेत् सतथा विधः आत्मनो क्षेमम् अन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् तथा विधः। इसलिए हे महाराज कंस, आप भी ऐसे ही हैं, आपका भी शरीर छूट जाएगा, आप भी दूसरे देह में जाएंगे और इस तरह से विवश हैं, माया के वश में है। या कोई भी व्यक्ति तथा विधह, जिसका जन्म मरण निश्चित है और दूसरा शरीर मिलेगा ही और ये शरीर छूट ही जाएगा, परवश है जीव, शरीर छूट जाता है, पुनर्जन्म होता है। अतः आत्मन क्षेमम अन्विच्छन, जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, कल्याण चाहता है, उसे चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से द्रोह ना करे, किसी का वध ना करे, किसी को सतावे ना। अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, हित चाहता है, जैसा आप चाह रहे हैं, आप अपना हित चाह रहे हैं, कल्याण चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक सुझाव देता हूं कि किसी को सता करके, किसी को मार करके अपना हित मत चाहिए, अपना हित मत आपकी इच्छा कीजिए। क्योंकि द्रोगधुर वही पर तो भय, ये भेद कर रहे हैं, द्रोगधुर वही, द्रोगधुर जो द्रोह करता है, दूसरे को सताता है, पीड़ा देता है, मारता है, तो पर तो भय, उसको दूसरों से भय होता है। किससे भय होता है? पहला भय तो इस जगत के जो नियामक हैं समस्त प्राणियों के, विशेषकर मनुष्यों के और पापियों के, तो जमराज से भय होता है। जमराज निश्चित दंड देते हैं, और कोई व्यक्ति और लोगों के चंगुल से छूट जाए, लेकिन जमराज से छूट जाएगा ऐसा नहीं, तो मरना ही पड़ता है, और जहां भेज देंगे वहां जाना पड़ता है। भागवत में ऐसा लिखा गया है कि जब जीव नरक में जा करके जमराज जी के दूतों से कहता है हमको क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती किया है, पाप किया है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, जब क्षमा करने को कहता है तो वो 100 गुना पीटते हैं। जमराज के दूतों को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे यहाँ पर पुलिस को गाली देने और मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से जमराज के दूतों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे मारना चाहिए, काटना चाहिए, छेद करना चाहिए, आग में जलाना चाहिए, और कितना भी हाहाकार करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन फिर भी मारना चाहिए। तो इस तरह से ट्रेनिंग ले करके, और जब परीक्षा में पास हो जाते हैं वो, तब उनको जमराज का दूध बनाया जाता है। ये ठीक है, अब ठीक हो गया। तो कोई कितना भी निहोरा करे, प्रार्थना करे, लेकिन जमराज के दूध सुनते नहीं, मारते ही रहते। तो इस जीवन में जो व्यक्ति दूसरे को सता रहा है, किसी मनुष्य को दुख दे रहा है, अथवा किसी पशु को काट करके खा रहा है, जबकि वह बेचारे पशु उसी दिन दशा में है जिस दिन दशा में ये है, ये जीना चाहता है लेकिन दूसरों को मार करके जीना चाहता है, तो एक दिन जमराज के कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। तो जमराज जी डायरेक्ट बात नहीं करेंगे ऐसे पापियों से, तो पहले से ही कह देंगे कि जाओ उसको मारो, विविध नरकों में डालो। ऐसा कहा गया है कि जो लोग पशु खाते हैं तो पशु के शरीर में जितने रोएं रहते हैं, जितने रोम केश रहते हैं, उतने उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। कल्प कल्प भरी एक एक नरक का, एक एक नरक में एक एक कल्प, और नरक भी असंख्य है। तो नरक से कभी भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। और कोई व्यक्ति मूर्खता बस नरक की सत्ता न माने तो उसके लिए नरक से वो बच जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है जिसको कारागृह विभाग का ज्ञान नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि पुलिस क्या है और कारागृह क्या है, कोर्ट क्या है, तो कहेगा कि मैं तो जेल नहीं मानता, मैं पुलिस भी नहीं मानता। लेकिन जिस दिन पकड़ा जाएगा और पुलिस के डंडे उस पर लगेंगे और कारागृह में जाएगा, तब कहेगा ओ सत्यम कारागृह, कारागृह भी एक सत्य वस्तु है और पुलिस भी सही वस्तु है, फैक्ट है। जब तक पाला नहीं पड़ा है तब तक तो कल्पना है। उसी तरह से जिस दिन नरक के द्वार पर पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि हाय रे भगवान, मैं तो झूठा समझता था, कथा कहने वालों को भी झूठा समझता था, वे स्वर्ग नरक की बात करते थे तो मैं झूठा समझता था। तो उसके लिए भी पीटा जाता है कि क्यों झूठा समझा, झूठी कथाओं को, झूठे अखबार को सही समझा और वेद शास्त्र को झूठा समझा, जो सही बात थी उसको झूठा समझा और जो झूठी बात है उसको सही समझा। इस संसार में देखते हैं झूठी झूठी कहानियां लोग लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, और ट्रेन में पढ़ते जाते गाते भी हैं कि झूठे मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए। तो स्वयं रोने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं झूठी झूठी कथा पर, मोहब्बत की झूठी कथा पर मैं रोया खूब, तो क्यों रोए? और उस कथा को पढ़ करके अब आजकल के बुद्धू लोग रोते हुए चलते हैं, रुमाल से आंसू पोंछते रहते हैं ट्रेन में, रो रो के। झूठी कथा है, जो सही भगवत गीता है उसको तो पढ़े नहीं, श्रीमद भागवतम पढ़े नहीं, झूठी कथाएं पढ़े। तो वहां जाकर के अगर जमराज के दूत से कहेंगे कि मैं तो गीता को झूठा समझा, भागवत को झूठा समझा, तो और पीटेंगे, क्यों झूठा समझा, सही को क्यों नहीं सही समझा, ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी ना। अपनी जिम्मेवारी है ना कि यहां पर जो सत्य वर्णन है उसको समझे, और नकली है, कचड़ा है, ढोंग है, उसको छोड़। उसी कचड़ा को रोज रोज जब सवेरे होते हैं जितना चाव से न्यूज पेपर पढ़ते हैं उतना चाव से गीता पढ़ना चाहिए ना, भागवत पढ़ना चाहिए। सवेरे सवेरे कौए की तरह काव काव, क्या हुआ क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, कौन क्या हुआ, चक क्या बोला, बस यही पढ़ना है। यह मिनिस्टर क्या बोला, वह मिनिस्टर क्या बोला, और सब झूठे मिनिस्टर। अरे जो बोले हैं भगवान उसको तो सुनिए, श्री भगवान उवाच, श्री शुक उवाच, ये सुनने लायक चीज। मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूं, मनुष्य जीवन में यह सुनने के लिए बनाया गया है, ये सब कचड़ा नहीं। कि मॉर्निंग न्यूज सवेरे सवेरे दुनिया के कचड़ा दिमाग में ठूसते हैं, कान के रास्ते, आंख के रास्ते से भरा हुआ है मन में, दुनिया भर का समाचार लाकर ये भरो ये भरो ये भरो, उसको तो निकाल करके अब अमृत भरना है। हाँ, तो मैं यह कह रहा हूं कि जो भी प्रायश्चित है, जो भी सुधार है यहां है, मरने के बाद जमलोक के पथ पर अब कोई सुधार नहीं, कोई सुनवाई नहीं, लेकिन यहां काफी चांस है। श्रील सुखदेव गोस्वामी छठे स्कंध में कहते हैं कि बहुत टाइम है, अब से भी पाप छोड़ करके और भगवान का नाम लिया जाए तो पहले के सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं यहां पर, लेकिन यहां यदि नहीं किए तो फिर वहां पर कोई सुनवाई नहीं। यहां पर थोड़ा कर्म करने से भी, थोड़ी भक्ति करने से भी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, नामाभास से ही पाप खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहां पर कर लेना चाहिए। श्रील वसुदेव जी कहते हैं कंस से कि राजन, कोई भी व्यक्ति जो अपना कल्याण चाहता है, हित चाहता है, आत्मनो क्षेमम अनु इच्छम, जो निरंतर अपने कल्याण की कामना करना चाहता है, उसके लिए चाहिए कि वह दूसरों को सताना छोड़ दे। तो दूसरे को मार करके, दूसरे को सता करके कभी हित होगा ऐसा हो नहीं सकता। एक एक क्रिया का दंड भोगना पड़ेगा इस प्रकार की क्रियाओं का। तो आप यदि अपना हित चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, तो अपने भगनी के वध रूप इस विकर्म से विरत हो जाइए, ये काम मत कीजिए। आप सुख चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ से भय होगा, एक तो जमराज से भय है और दूसरा भय देवकी के बंधुओं से होगा। देवकी के पिता जो जीवित रहेंगे, इसके सब संबंधी जीवित रहेंगे, और आज मान लीजिए आप देवकी को मार देते हैं तो मन में कह रहे मैं भी जीवित रहूंगा तो मैं भी बदला लेने की चेष्टा करूंगा आपसे। आज मैं कमजोर पड़ रहा हूं लेकिन भगवान की कृपा से कुछ दिन के बाद हो सकता है मैं बदला चुका लूं आपसे। ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि देवकी का एक भी परिवार बचा रहेगा तो ये याद करेगा कि कंस ने देवकी का वध किया था तो बदला लेने की तैयारी करेगा ही, ये भय बना रहेगा। भले वो बदला ले सके या ना ले सके लेकिन ये भय आपके लिए रहेगा। और वास्तव में इस संसार में देखा गया है कि कोई व्यक्ति कितना भी बलवान हो, किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कर देता है तो उसी समय उसके जीवन में भय आ जाता है, छा जाता है। कितना भी बलवान आदमी अब बचना चाहता है वो डर करके रहता है। आप देख सकते हैं संसार में कोई किसी का वध किया है वो आदमी खुलम खुला निर्भय नहीं घूम सकता है। और जिसने किसी का वध नहीं किया है, जिसने किसी को सताया नहीं है, वो बिना अस्त्र के, बिना सिक्योरिटी के रक्षा को घुमा करता है, उसको कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन वो भले बहुत बड़ा मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, राजा हो, लेकिन किसी का वध किया हो तो क्या मजाल कि वो घूम जाए अकेले, उसको भय होता है। कहीं भी मारा जा सकता है, कर्म का ऐसा कठिन फल है। तो कंस को समझाया जा रहा है कि यदि आप आज मार देते हैं लेकिन आप पर उसी आज से ही खतरा चालू हो जाएगा तो परलोक भी बिगड़ेगा, नरक में गिरेंगे और इस लोक में भी आपको मरने का भय और ज्यादा बढ़ जाएगा। देवकी तो मर जाएगी, देवकी के पुत्र नहीं होंगे लेकिन देवकी के संबंधी रहेंगे वे मारेंगे। तो इसे तो बेटर है कि देवकी को जीने दीजिए और सात लड़के जब हो जाए तो आठवें लड़के, आठवां जब पुत्र हो तो आप देवकी के पुत्र से मित्रता बढ़ाइए, उसे स्नेह कीजिए और बारंबार ऐसी भावना कीजिए कि आपको मामा मान करके वो आपसे प्यार करे। क्यों मारेगा भाई, उपाय करना है तो मार्कंडेय जी की तरह चिरंजीवी होने का उपाय कीजिए, ये वैध तरीका है ना। या आप कहेंगे तो मैं भी प्रयास करूंगा, देवकी का आठवां लड़का होगा तो कहूंगा कि बेटा मामा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी माँ को मारने जा रहे थे लेकिन कृपा करके छोड़ दिए, इसलिए तुम भी मत मारना, कितना भी गलती करेंगे मैं भी अपने बेटा को सिखाऊंगा और देवकी भी सिखाएगी। किसी भी तरह से आठवें बेटा से आपने आठवें भागने से प्रेम कीजिए, और नहीं मारना ही है तो आठवें को मार दीजिएगा, जो कुछ भी करना हो अभी सात बच्चा तो होने दीजिए, बेचारे इसको तो जीने दीजिए। ये सब बातें कह नहीं रहे हैं, लेकिन मन में ये सब बातें आ रही हैं। तो किसी भी तरह से आपको इस तरह का पाप करना ठीक नहीं। उन्हें भय दिया, दृष्ट और अदृष्ट भय। दृष्ट भय तो देवकी के संबंधियों से, और अदृष्ट भय जमराज से, ईश्वर से। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने। देवकी का केस पकड़े रह गया, तलवार को ऐसे ताने रह गया, कहा नहीं मैं मारूंगा इसको। तब पुनः वसुदेव जी समझ गए कि ओहो इसको भाई की बात कहना ठीक नहीं है। पुनः साम नीति से ही काम लिए, साम नीति ही बतानी चाहिए। तो फिर कहते हैं ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पमा हम तुम नारहसि कल्याणी इमाम तम दीन वत्सल। तो फिर वही साम नीति, शांति के मार्ग को अपना रहे हैं, उसको छेड़ना ठीक नहीं था। देखेंगे अब तो ये मार ही देगा। तब कहते हैं ऐसा यह, आप जरा ध्यान से देखिए देखिए, बेचारी जिसका आप केस पकड़े हैं, वसुदेव जी भी खड़े हो गए हैं, कंस को ऐसे रोक रहे थे, मना रहे थे, लेकिन हाथ ऐसे नहीं कर रहे थे निकट, केवल ज्ञान दे रहे थे, देवकी की दशा बता रहे। ऐसा यह, ऐसा का अर्थ नव विवाहिता, अभी अभी बेचारी का विवाह हुआ है, इसके जीवन के मंगलमय दिन का प्रारंभ हुआ है, और आप अमंगल करने जा रहे हैं, ठीक नहीं। यह क्या है जरा इस पर आप विचार कीजिए। ऐसा तव अनुजा, यह आपकी सबसे छोटी बहन है। वैसे तो बड़ी बहन हो चाहे कोई भी हो, स्त्री मात्र पर दया करना चाहिए, बहन पर दया करना चाहिए, और उस पर भी छोटी बहन है। ऐसा तव अनुजा, यह बेचारी देव की आपकी छोटी बहन है, कृपणा, और यह दीन है, देखिए किस तरह से रो रही है, विकल हो रही है, इसके केस खींचे जा रहे हैं और इसकी जान मारने जा रहे हैं। तो यह कृपणा है, बेचारी दीन है, ये अपने प्रयास से अपने को बचा भी नहीं पाएगी। तो कृपणा पुत्री को उपमा, और अभेद जो साम नीति का एक अंग है, अभेद बता रहे हैं। सच कहिए तो कंस जी, यह आपकी पुत्री है, बहन नहीं है। पुत्री को उपमा, यह आपकी बेटी के समान है, आप अपनी बेटी का, अपनी पुत्री का हनन करने जा रहे हैं। अथवा पुत्री कोपमा का अर्थ है यह कठपुतली की तरह है, कोई प्रतिकार नहीं कर रही। देवकी बेचारी ऐसे हाथ भी नहीं कर रही थी कि तलवार हाथ पर लग जाए और गला बच जाए, ऐसे भी नहीं कर रही, रो रही थी। और चेतन पुतलिका की तरह यह है जो प्रतिकार नहीं कर रही है, आपकी पुत्री के समान है। कल्याणी, यह कल्याणी है, कल्याणी का अर्थ है यह निरपराधा है, आपका कोई इसने अपराध नहीं किया। आपको अभी भी जब आप इसे मारने जा रहे हैं, इसने एक शब्द भी आपको अपशब्द नहीं बोला, आपको कोई ये नहीं कहा कि तुम क्रूर हो, ये हो, आपका कोई अपराध नहीं किया। कल्याणी, और आप हैं दीन वत्सल, दीनों से स्नेह करने वाले। तो देवकी से बड़ा दीन कौन होगा, इसलिए एतम हम तुम न और हसी, आप इसका वध मत कीजिए, आप आपके लिए उचित नहीं है कि इसका वध करें, आप इसको छोड़ दीजिए, वध मत कीजिए। तो हम दीन वत्सल का सारस्वत अर्थ है कि दीनेभ्यो अपि राज करत्वे न वत्सम लाती इति दीनवत्सल। जो दीनहीन गरीब आदमी के घर से भी राजा के टैक्स के रूप में बछड़ा को खोल करके लावे, उसको दीन वत्सल। कभी कभी ऐसा होता था, किसी आदमी के घर पर कोई संपत्ति नहीं है, दीन है बेचारा, और गौ चली जाती है दीन में चरने के लिए, तो घर पर एक वत्स गाय का बछड़ा बंधा रहता है। तो राजा के सरकार के कर्मचारी आते हैं और कहते हैं इसने कर नहीं दिया है, कहाँ गया कहाँ गया, तो बछड़ा खोल कर ले जाते हैं। महाक्रूर, उसको दीन वत्स लाती, दीन के बछड़े को भी जो लावे क्रूर, तो सरस्वती जी यह बोल रहे हैं कि आप तो दीन वत्सल हैं, दीनों के भी बछड़े को ला सकते हैं, तो त्वम एतम हंतुम किम न अरहसी अपितु अरहसी एव, क्या आप इसका वध करने योग्य नहीं, आपके लिए उचित है नहीं वध करना, इसका है उचित है, आपके लिए यही उचित है कि वध कर दीजिए, मतलब सरस्वती जी बोल रही है आपके लिए यही उचित है, लेकिन प्रकट अर्थ है कि ये आपके लिए उचित नहीं है, आपकी छोटी बहन है, आपकी पुत्री है, दीन है, हीन है और निर्दोष है। जब मान लीजिए छोटी बहन है या बेटी है लेकिन कुछ आपका अपराध किया होता तब भी आप मार सकते थे, लेकिन इसने कोई अपराध नहीं किया, अतः आप इसका वध मत कीजिए। लेकिन एवं स साम भिर्भेदैर बुद्धिमानोऽपि दारुणः न निवर्तत कौरव्य पुरुषादा ननु व्रतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, हे कौरव्य, हे कुरु वंश में उत्पन्न परीक्षित महाराज, आपके भी वंश में एक दो आदमी ऐसे हुए थे जो किसी भी तरह से समझाने पर नहीं समझे थे, जैसे दुर्योधन, आप भी उसी खानदान के कौरव्य। वो घटना याद करा रहे हैं, दुर्योधन इतना खल था, इतना दुष्ट था कि डायरेक्ट भगवान संधिदूत बन करके गए और पांच गांव मांग रहे थे पांचों भाइयों के लिए, पांच शहर मांग रहे थे, दे दो और सारी धरती रखो, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, लेकिन वह भी दुर्योधन नहीं दिया, कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक से जितना भूमि का छेदन होता है उतना भी भूमि नहीं दे सकता बिना युद्ध। तो युद्ध हुआ और 18 दिन में संपूर्ण भूमि छोड़कर चला गया, 18 दिन युद्ध हुआ। कौरव संबोधन कर रहे हैं, यहां जदुवंश में ये कंस हुआ है और पूर्व वंश में दुर्योधन जी हुए थे, कितना भी समझाया जाए, वेदव्यास देव समझाए, मैत्रेय जी समझाए, विदुर जी समझाए, कोई समझाए, लेकिन नहीं मानने वाला। तो उनको समझा करके तो भगवान हार गए और कंस को समझा कर भगवान का बाप हार गया। यहां पर तो इतना ये खल था। दोनों बाप बेटा लगे रहे, भगवान लगे रहे कि दुर्योधन सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरा। एक कवि ने कहा है कि खल में और सांप में खल ज्यादा भयानक होता है, सांप फिर भी मान जाता है, तो दुर्योधन में और शेष नाग में तुलना की जा रही है, वो कवि कर रहा है। देखिए दुर्योधन को समझा कर भगवान हार गए लेकिन उसको अनुकूल नहीं बना सके, वो खल था, लेकिन महाभयानक शेष नाग को भी अपना मित्र बना लिए भगवान कृष्ण, सोते हैं सज्जा बनाकर, सांप भी मान जाएगा लेकिन खल नहीं मान सकते, सांप को भी अपने वश में किया जा सकता है लेकिन खल को नहीं। देखिए भगवान नारायण सांप को अपने वश में कर, सबसे भयानक सर्प है, एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है, इतना भयावह सर्प है। यदि वो भगवान के ही स्वरूप है लेकिन केवल सर्पत्व की दृष्टि से विचार कीजिए तो इतने भयानक सर्प के देह पर आराम से भगवान सोते हैं और उनको नहीं डसता है, बल्कि छत्र तान करके और सेवा करता है, अपने शरीर को कमल से भी अधिक सुकुमार बना करके भगवान के अंगों को सांप सुख देता है। तो सांप सेवा कर रहा है, बस में हो गया, लेकिन दुर्योधन बस में नहीं है। खल में और सर्प में खल ज्यादा भयावह होता है, कंस भी एक खल है। इत्युक्त स खल पाप भोजन नाम कुलपांसन, सुखदेव गोस्वामी इसके लिए कहे खल पाप भोजपांसन, भोजवंश का अंगार नष्ट करने वाला, इस तरह से उसको उपाधियां दे रहे। तू नहीं माना। एवं स सामभीर भेदर बुद्ध मानो अपी सामभी साम, पांच प्रकार के साम नीति से समझाया गया, जैसे पहले कहा गया श्लाघ नीय गुण सुर भवान भोज जसोस कर इत्यादि। बीच में जुक्ति बताई गई, इतना दुर्लभ ज्ञान दिया गया, और उसके बाद फिर भेद नीति से समझाया गया एवं स साम भीर भेद आई, यहां तक कि साम नीति को दोहराया गया और बहुत सुंदर ज्ञान दिया गया, लेकिन बोध मान है बोध दिया गया, शास्त्रों का दुर्लभ ज्ञान दिया गया, लेकिन न निवर्तत कौरव्य हे कुरुवंशी परीक्षित, वह निवर्तित नहीं हुआ। देवकी के वध का दुराग्रह निर्बंध छोड़ा नहीं, मारना ही चाहता था। क्यों क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं माना मारने से, क्योंकि दारुण एक तो स्वभाव से ही वह भयावह था, क्रूर था, दूसरे की हिंसा करने में उसकी रुचि थी, बहुत भयावह था, दारुण, और ऊपर से राक्षसों के ही बीच में रहता था। पुरुषादन अनुव्रत पुरुषान अगंति खादंति ते पुरुषाद, जो पुरुषों को मनुष्यों को खाते हैं उनको पुरुषाद कहते हैं, राक्षस। इसके जितने मंत्री थे और सहयोगी थे सब राक्षस थे, असुर थे वास्तव में, जैसे अघासुर बक केसी चारुण मुष्टिक जितने थे तृणावर्त वगैरह धेनुक अरिष्ट, ये सब राक्षस थे और यही इसके एसोसिएट्स थे। कोई बुद्धि भी लेता था तो इन्हीं लोगों से पूछता था कि अब हमको क्या करना चाहिए, तो वे लोग ठीक उल्टा बुद्धि देते थे। तो इन राक्षसों के बीच में रहते रहते इसका स्वभाव और क्रूर हो गया था, और ऐसे जन्म से ही एक राक्षस था, एक राक्षस के द्वारा ही पैदा हुआ था, नाम भर था कि ये उग्रसेन जी का बेटा है। उग्रसेन जी का रूप धारण करके एक द्रुमिल नाम के राक्षस ने इसके मां के साथ संयोग किया था, वो राक्षस ही था जन्म से, वो कोई जादू नहीं था, तो राक्षस पना उसमें था। और पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का राक्षस, पहले जन्म में भी राक्षस था, राक्षस से ही जन्म हुआ था और राक्षसों की संगति में रहता था, तो सुधार कैसे हो, एक भी कारण उल्टा हुआ होता तो कुछ सुधार सकता था। तो पूर्व जन्म से संस्कार से और आधुनिक जन्म से और संगति से तीनों से गया बीता था। पुरुषादन अनुव्रत उनका ही अनुगामी था, वो जैसे कहते थे वैसा करता था, इसीलिए नवर्तत नहीं ही माना, इस तरह का स्वभाव। जन्म भी खराब हुआ हो, स्वभाव खराब हो और अपना संगी साथी भी खराब मिल जाए तो आदमी निश्चित नष्ट हो जाता है। को न कुसंगति पाई नसाई रहे न नीच मते चतुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं कि खराब संगति पा करके कौन नष्ट नहीं हो जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण बहुत सुंदर दिया है, और सत्संगति पा करके कौन नहीं सुधर जाता है, तो धुआं का उदाहरण देते हैं। धुआं समझते हैं स्मोक, तो धुआं हवा का संग करता है तो आकाश में चढ़ जाता है, हवा का संग करने से, और आकाश में जाकर के बादल बन जाता है, बादल बन करके पानी बरसाता है, दूसरे का उपकार करता है, और वही धुआं यदि ऊपर नहीं चढ़ा, आकाश का संग नहीं किया, तो लोगों के आंख में लग करके दुख देता है, नीचे रह गया तो आंख में पीड़ा उत्पन्न करता है। जो वही धुआं यदि किसी विद्वान के शास्त्रज्ञ के हाथ में लग जाता है तो उस धुएं को वे लोग किसी बर्तन में इकट्ठा करते हैं और कालिख बनाते हैं, कालिख काजल, और उसी काजल से सिलाही बनाते हैं, इंक बनाते हैं मसी, और उसी से श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। तो वह धुआं यदि किसी विद्वान के हाथ में पड़ गया तो वो पुराण लिखेगा, लिखिए पुराण मंज मसी सोई। वह धुआं और नहीं ऐसे केवल काजल बन गया तो कहीं भी लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। अथवा अच्छा काजल बना तो स्त्रियां उसे अपने आंखों में धार लगाती हैं या पुरुष लगाते हैं, काजल भी बन गया तो अच्छी संगति कहूंगा, या बादल बन गया तो अच्छा हुआ, नहीं ऐसे ही रह गया अच्छा संग नहीं प्राप्त हुआ तो वही कालिख रह जाएगा, धब्बा लगेगा, चाहे आंख में धुआं डाल करके अंधा बनाता चलेगा सब अपने, यही वो करेगा। तो कौन सा ऐसा ही था, हमारे यहां भोजपुरी में कहावत कहते हैं, एक तो आदमी स्वयं ही खराब है और संगति खराब मिल जाए तो उसको कहते हैं तो करेला अपने आप तीखा होता है और उसको नीम पर चढ़ा दिया जाए नीम वृक्ष पर, तो वो कितना तीता होगा अपने आप में करेला बहुत तीता होता है और फिर नीम महाशय का संग करे तब तो कहना ही क्या है, कितनी तिताई उसमें आएगी। एक और कहावत कहते हैं एक तरह ली भाल दुज पवली कुदाल, भाल भालू भल्लूक समझते हैं ना, भालू भालू एक जंगली जानवर होता है जिसके शरीर पर बहुत केस होता है काला काला और बहुत उसके तीक्ष्ण नख होते हैं, बहुत कठिन, और जमीन को ऐसे ही खोद देता है, बहुत गहरा खोदता है, हम लोग ने देखा है जंगल में, उसको भलकोड़ कहते हैं। भाल जहां भालू जहां कोड़ता है खोदता है बिना कुदाल के बिना फरसा के कोड़ता है, तो जो बिना कुदाल के ही बहुत गहरा कोड़ सकता है उसको कहीं कुदाल मिल जाए तो कितना कोड़ेगा कितना खोदेगा। तो उसी को कहते एक तरह हली भाल दूजे पवली कुदाल, ऐसे ही एक क्रूर था और उस पर भी सब या घासुर बकासुर त्रिणावर्त धेनु अरिष्ट सब साथी मिले हुए, प्रलम्ब द्वीप जरासंध यही सब इसके सहयोगी। इस कारण से यह इसको ये बुद्धि आई ही नहीं, वास्तव में जो भी बुद्धि होती है ज्ञान होता है संगति पर निर्भर करता है, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, बुरे लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। तो कंस छाट करके बुरे लोगों का संग कर रहा था, इसलिए इतना अच्छा ज्ञान दिया भगवान के पिताजी ने लेकिन नहीं माना। साम नीति से बोले, बेटी कह रहे हैं कुंती को देवकी को, बेटी कह रहे हैं कि आपकी पुत्री है, आपकी छोटी बहन है, इसने कोई अपराध नहीं किया है, विवाह का अवसर है और आपकी बड़े बड़े वीर प्रशंसा करते हैं, आप कभी स्त्री का वध नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं, वो नहीं किए हैं, और दुर्लभ ज्ञान दे रहे हैं। मानो सुखदेव गोस्वामी भी शोक में डूब गए कि हे परीक्षित महाराज, फिर भी वो दुष्ट नहीं माना, क्या किया जाए। निर्बंधम तस्य तद्ज्ञात्वा विचिन्त्या नकदुन्दुभि प्राप्तं काल प्रतिवेढुं इदं तत्रानुपद्यत। तो उसके इस भगनी बध रूप निर्बंध को हठ को दुराग्रह को देखकर वसुदेव जी अब सोचने लगे क्या करना चाहिए। साम नीति फेल कर गई, भेद नीति फेल कर गई, जुक्ति ज्ञान दान भी सब फेल कर, और हाथ में तलवार लिया है, बहुत जल्दी सोचना है उनको कि अब क्या करें, एक उपाय तो विफल हो गया, अब दूसरा क्या करें। उसके निर्बंध को देख करके वसुदेव जी सोचने लगे, प्राप्तम कालम प्रतिवेढ़ इदम तत्रानुपद, तो वो सोचने लगे किसी भी तरह से देवकी के इस मृत्यु को टालना चाहिए, किसी भी तरह से देवकी को बचाना है और बहुत जल्दी करना है। वसुदेव जी को जैसे मैं एक दिन कहा था कि वो विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे, विलक्षण, इसलिए तत्काल ही वे सोच लिए, जो बातें हम कहने में देर कर रहे हैं उसको उन्होंने एक सेकंड में सोच लिया कि ये करना है। बताइए जब कई उपाय विफल हो जाए और हाथ में तलवार लिया है क्रूर व्यक्ति मारने के लिए, उसको समझा पाना वास्तव में एक असंभव बात, बहुत कठिन बात थी, लेकिन फिर भी वसुदेव जी साहस नहीं खोए, हिम्मत नहीं हारे, तो वे अब दूसरे उपाय से देवकी की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बहुत विचार किया है, कौन से कुछ कहा है, वो समय हो गया, इसको हम दूसरे सिटी में फिर कहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम। जब देखे कि कौन से किसी भी उपाय से, अर्थात सम नीति से, भेद नीति से, या युक्ति द्वारा, तत्वावबोध द्वारा अपने निर्बंध को नहीं छोड़ रहा है, देवकी का वध करने पर तुला हुआ है, तभी बहुत गंभीर चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे, क्या उपाय करूं कि देवकी की आसन्न मृत्यु टल जाए। लगे सोचने और अति शीघ्र उन्हें कुछ निर्णय करना था। इतने बड़े मेधावी प्रतिभावान व्यक्ति की युक्तियां और उनके उपाय नीतियां विफल हो रही थी उस क्रूर के सामने। फिर भी उस वसुदेव जी भगवान की कृपा के भरोसे थे, उन्होंने मन का उत्साह खोया नहीं, विचिंत्य। वे का अर्थ है विशेषण चिंत्य, विशेष रूप से चिंतन करने लगे, सोचने लगे और उपाय अब क्या करें। यहां पर एक बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को सदा भगवान की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे यहां कहते हैं हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम। हिम्मत अर्थात साहस नहीं हारना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के कार्य को पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो श्री वसुदेव जी एक बहुत ही आशावादी और उत्साही व्यक्ति थे, उस विषम परिस्थिति में भी देखिए वे किस तरह से चिंतन करने लगे और तत्काल ही इदम अन्न पद्यत विचिंत, वो सोचे और तत्काल ही इस निर्णय पर पहुंचे। क्या निर्णय, आगे श्री वसुदेव गोस्वामी बता रहे हैं वसुदेव जी का निर्णय क्या हुआ। श्री वसुदेव जी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आनक दुंदु भी, वसुदेव नाम भी दिया जा सकता था, लेकिन आनक दुंदु भी कहने का आशय है कि वसुदेव जी जन्म से ही एक महासफल व्यक्ति थे, सब तरह से सफल, जो चाहे वो हुआ, और आगे इन्हें भगवान के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होकर के ही रहेगा। यह आनक दुंद भी शब्द बता रहा है, इनके सफल्य को सूचित कर रहा है। जन्म के समय ही जिसके जीवन की सफलता के सूचक देवताओं के वाद्य बज रहे थे, तो वह देवकी की रक्षा भी कर सकता है भगवान की कृपा से। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कहने का यह आशय है, आनक दुंद भी है सफल व्यक्ति। तो तत्र इदम अन्न पद्यत, इस प्रकार से सोचने लगे, क्या सोच रहे हैं, मृत्युर बुद्धिमता पोह्यो जावद बुद्धि बलोदयम् यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। जावद बुद्धि बलोदयम्, किसी व्यक्ति की जहां तक बुद्धि काम करे और जहां तक बल काम करे, बुद्धि का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग समझ, और बल का अर्थ है शारीरिक बल, धन आदि या सेना, जहां तक बुद्धि काम करे, जहां तक बुद्धि की पहुंच है, और जहां तक धन शारीरिक बल या स्वजनों का बल आदि सैन्य बल काम करे, उस सीमा तक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी मृत्यु को रोके, अथवा दूसरे की मृत्यु हो रही हो तो उसकी मृत्यु को रोके। मृत्यु बुद्धिमता अपोह्य, यह बुद्धिमान का कर्तव्य है। श्री वसुदेव जी तत्काल ये बातें मन में सोचने लगे, जावत बुद्धि बलोदयम, का अर्थ जहां तक बुद्धि और बल का उत्कर्ष हो वहां तक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के बाद भी किसी की रक्षा नहीं हो पाती है या अपनी रक्षा नहीं हो पाती है तो देहधारी जीव के पक्ष में फिर अपराध नहीं माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करता है बुद्धि और बल लगा करके या दूसरे की रक्षा नहीं करता है तो उस पर दोष लगता है, पाप लगता है, अपराध लगता है। लेकिन अपनी बुद्धि लगाया, बल लगाया, धन लगाया, फिर भी कोई नहीं बच पाया तो प्रयास करने वाले पर कोई अपराध नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कोई स्वजन अपने गृह में बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो जहां तक बुद्धि है, जहां तक बल है, धन है, उसकी चिकित्सा करानी चाहिए उसकी रक्षा के लिए, और संपूर्ण धन लगा करके या जैसे तैसे उसकी रक्षा नहीं हो पाई तो फिर प्रयास करने वाले का कोई दोष नहीं रहेगा, भगवान की के दृष्टि में वह व्यक्ति निर्दोष रहेगा, इसने प्रयास किया। या कोई व्यक्ति हमसे रक्षा की अपेक्षा करता है, दीन है और चाहता है कि हमारी रक्षा होनी चाहिए, तो ऐसे आश्रित शरणागत की रक्षा या अपने सबॉर्डिनेट की रक्षा, अपने अधीनस्थ, अपने पुत्र की, अपने स्त्री की, अपने मित्र की, अपने माता पिता की या और भी कोई भी जो शरणागत व्यक्ति है उसकी रक्षा जहां तक बल काम करे या जहां तक बुद्धि का बल काम करे, जावत बुद्धि बलोदयम, जहां तक बुद्धि का बल लगे या बुद्धि और बल लगे वहां तक रक्षा करनी चाहिए। तो एक प्रश्न होता है क्या अब वसुदेव जी की और बुद्धि बाकी रह गई है लगाने के लिए, कंस के लिए उन्होंने सारा बल लगा दिया या बुद्धि लगा दिया देवकी को बचाने के लिए? नहीं लगाए हैं, इससे सिद्ध होता है वसुदेव जी के पास और भी बुद्धि है जिसका इस्तेमाल वे करेंगे और काम हो जाएगा, ऐसा देखेंगे। जहां तक बुद्धि काम करे, बल काम करे, तो यहां पर तो बल के काम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, कंस के सामने बल प्रयोग व्यर्थ होता है। इसलिए जावत बुद्धि बलोदयम, बुद्धे बलस्य उदयम उत्कर्षम जावत तावत मृत्यु अपोहय, जहां तक बुद्धि का उत्कर्ष काम करे वहां तक प्रयास करना चाहिए। वसुदेव जी के लिए तत्कालिक यही अर्थ है, देवकी को बचाना है। ये सोच श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिए हैं, कैसे में मैं सुना हूं। वो दूसरे की मृत्यु या अपनी मृत्यु सब सबको टालने के लिए कहते हैं प्रयास करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं तो भूख लगती है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे कुछ दिन में, या बीमार होते हैं नहीं दवा लेंगे तो मर सकते हैं, ठंडा लगता है नहीं कपड़ा ओढ़ेंगे तो मर जाएंगे। तो हम लोग भी प्रतिदिन मृत्यु का प्रतिकार कर रहे हैं, हटा रहे हैं मृत्यु को, वस्त्र ओढ़ करके और भोजन करके, दवा लेकर के, जैसे तैसे हम शीत का निवारण करते हैं या उष्म गर्मी का निवारण करते हैं, जैसे तैसे हम प्रतिकार कर रहे हैं मृत्यु का, मरना नहीं चाहते हैं और करना भी चाहिए पर गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। कंस जैसे उचित विधि से मृत्यु का प्रतिकार होना ही चाहिए, यह बुद्धिमान का कर्तव्य। बहुत दिन जीने की लालसा होनी चाहिए व्यक्ति को। आयुर्वेद में या वेद में यह मनोरथ किया गया है, किसी को जब कोई आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद देता है कि आप पूर्ण 100 वर्ष तक जीवित रहो, 100 वर्ष से अधिक जीवित रहो। हमारे यहाँ गांव में एक व्यक्ति बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे, बड़ा आश्चर्य होता था जब कोई बच्चे प्रणाम करते थे तो वे कहते थे बूढ़ा होकर के मरो। हम लोगों को तो बड़ा खराब लगता था कि मरना शब्द आ रहा है आशीर्वाद में, लेकिन उसका तात्पर्य बहुत अच्छा था, प्रपोर्ट अच्छा था कि युवावस्था में न मरो, 100 वर्ष का हो करके मरो, यह आशीर्वाद देते थे। 100 वर्ष जीवित रहो। तो जब दूसरे कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है 100 वर्ष जीने का, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम प्रयास करें कि अधिक से अधिक दिन जिए, और हमारे स्वजन जिए, हमारे आश्रित जिए, या सब लोग जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुख से जिए, किसी को रोग न हो, किसी को बुरा दिन न देखना पड़े, इस तरह का मनोरथ किया जाता है। तो रक्षा करनी चाहिए, यदि नहीं रक्षा करेंगे तो उपेक्षा दोष लगेगा और उसके चलते और अधोगति में जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि यह वाक्य, यह श्लोक यह बता रहा है कि भूल करके भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इसके विपरीत अपनी रक्षा करनी चाहिए। दूसरे किसी तरीके से प्रकृति मार रही हो और कोई मार रहा हो तो अपनी जान बचानी चाहिए, दूसरे की जान बचानी चाहिए। पर कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को ही मार डालते हैं, चाहे विष के प्रयोग द्वारा या जैसे तैसे मार डालते हैं। नहीं, मृत्यु अपोह्य, अपोह्य का अर्थ होता है जैसे अपोहनम, श्लोक गीता में भगवान बोले हैं, अपोह्य विनाश करना चाहिए, हटा देना चाहिए मृत्यु को, जहां तक बुद्धि काम करे, बल काम करे। ऐसे प्रयास करने वाले को दोष नहीं लगता है। लगा रहे हैं वसुदेव जी, क्या बुद्धि लगा रहे हैं कंस के प्रति, तो वो सोचे, यही निर्णय बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि कंस को सुनाकर नहीं बोल रहे हैं, स्वगतम आह, वे स्वगत स्वयं ही मन में सोच रहे हैं कि प्रदाय मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमां सुता में यदि जाए रन मृत्युर्वान अमृत चेत। सोच करके निर्णय कर रहे हैं, प्रदाय मृत्यवे पुत्रान, मृत्यु को पुत्र प्रदान करके, अर्थात जब पुत्र होंगे हायरन, पहला तो ये सोच रहे हैं यदि हमें पुत्र मिलेंगे तब मृत्यु स्वरूप कंस को पुत्रों को सौंप करके, मतलब कंस को देने की प्रतिज्ञा करके, और इमान कृपणा मोचे, इसको छुड़ा लो, देवकी को बचा लो, देवकी के पुत्रों को प्रत्यर्पण करने की प्रतिज्ञा करके देवकी को मुक्त कर लो इस महासंकट से। अद्भुत बात बोल रहे हैं कि सुता ने यदि जायरन, यदि ने मम सुता जायरन, यदि मेरे पुत्र होंगे तब, अगर नहीं होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई संकट ही नहीं आएगा। तो पुत्रों को देना यह भी एक बहुत भारी कष्ट है ना, जन्म लेते ही बच्चों को दे देना उस राक्षस के हाथ में, यह भी एक बहुत कठिन काम है। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि हो सकता है भगवान की कृपा से हमको कोई पुत्र ही ना, इस जगत में कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि आकाशवाणी कह रही है और उधर भगवान भी कहे हैं, तो भगवान तो जन्म लेंगे ही, लेकिन सुता शब्द भगवान के लिए नहीं आया है, ध्यान रखना चाहिए, ये अन्य बच्चों के लिए बोल रहे हैं। सुता ने यदि जायरन यदि जन्म लेंगे, हो सकता है नहीं ले, श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि यदि नहीं लेंगे जन्म तब तो और अच्छा है, तब तो हमारी पत्नी भी बच जाएगी और पुत्र होंगे ही नहीं, तो उनके मरने जीने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, यदि शब्द लगा रहे, हो सकता है न हो, और यदि हो गए पुत्र तो पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके, वचन दे करके, और मोचे कृपणान इमाम, इस बेचारी को मुक्त कर, इमाम का अर्थ इसको, इसकी क्या दशा हो रही है बेचारी, कितनी दुखनी है, इसको मोचे मुक्त कर लो। और एक और बात भी कह रहे हैं, मृत्युर्वान मृत चेत, चेत का अर्थ यदि। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे पुत्रों के होने के पहले ही यह मर जाए, कुछ भी हो सकता है। आदमी स्वस्थ है, स्वस्थ है तब तक हार्ट अटैक हो जाता है, चाहे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो संभावना कर रहे हैं हो सकता है कि हमारे पुत्र हो और पुत्रों के होने के पहले ही ये मर सकता है, और कदाचित नहीं मरा तो पुत्रों को सौंप दूंगा, तो पुत्र मरेंगे, देवकी तो बच जाएगी ना, देवकी नहीं बचेगी तो पुत्र होंगे ही कैसे, इसलिए जेने के न प्रकार ना देवकी को बचा लेना है, बस यही इनका निर्णय हो रहा। लेकिन देवकी को बचाने के लिए अब ये उपाय है कि पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा कर लो, यही सोच रहे हैं। तो फिर मन में आता है, मान लीजिए कोई कहे कि अरे पत्नी को बचाने के लिए आप बच्चों को कैसे सौंप देंगे इस क्रूर को, राक्षस को। तो फिर वसुदेव जी सोचते हैं मन में, विपर्ययवा किन्न सैद गतिर धातुर दुरत्यया, क्या विपरीत नहीं हो सकता है, कंस मेरे पुत्रों को हो सकता है न मार पावे, जैसा आकाशवाणी में कहा है, हो सकता है मेरा पुत्र ही किसी अलौकिक शक्ति से उसको मार दे, हो सकता है। लेकिन एक बार मन में आ रहा है कि ठीक है, आपका आठवां पुत्र तो अलौकिक शक्ति रखता है, वो तो विष्णु होगा, लेकिन बेचारे ये सात तो मारे जाएंगे ना। मान लीजिए मन में एक बात उठ रही है, तो कहते नहीं हो सकता है, विपर्जय है वह किन्न से, क्या विपर्जय नहीं हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता है, कंस मारना चाहेगा हमारे पुत्र को, लेकिन हमारा पुत्र ही तत्काल बलवान बन करके जैसे तैसे हो सकता है कंस का ही वध कर, अथवा हो सकता है कि जब मैं अपने पुत्र को अर्पित करूंगा कंस के लिए तो कंस का चित्त ही बदल जाएगा, ये कह सकता है कि ले जाओ ले जाओ। और ऐसा कहा भी कंस, कहा भी था, लेकिन नारद जी आकर के उसकी बुद्धि को घुमा दिए थे। वसुदेव जी सोच रहे हो सकता है कि हमारे पुत्र के कोमल शरीर को देख करके और कंस का चित बदल जाए, जब नहीं भी बदले तो हो सकता है हमारा पुत्र मार दे उसको। ये कैसे कह रहे हैं कि आपका पुत्र मार देगा, कंस प्रौढ़ है, आपका बच्चा कोमल होगा, वो कैसे मार देगा। तो वसुदेव जी बहुत इतिहास पढ़े हैं वैदिक, कहते ऐसा हुआ है, अरे कोई राक्षस केवल समुद्र का फेन फेंकने से मर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, नमुची को भगवान इंद्र ने ऐसे मारा था। उसी को कह रहे हैं विपर्जय व किम्न सा गतिर धातुर दुरत्यया, विधाता के ईश्वर की गति को जानना बहुत कठिन है, कब किससे किसको मार देंगे, कैसे बचा लेंगे, कोई ठीक नहीं है। पूर्ण आशा है कि हमारे बच्चे बच जाएंगे, और नहीं भी बचेंगे तो क्या करेंगे, कम से कम देवकी तो बची रहेगी। गतिर धातुर दुरत्यया, धाता के इस संसार का जो विधायक है, जो सारी व्यवस्था करता है, जन्म देता है, उसकी इच्छा को जानना बड़ा कठिन है, कब क्या करेगा। उपस्थितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापते, ऐसा देखा गया है वैदिक इतिहास में। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि उपस्थितो निवर्ते पर, आई हुई मृत्यु भी निवर्ते पर चली गई है, किसी की मृत्यु निश्चित हो चुकी थी कि इसको मरना है, लेकिन मृत्यु चली गई, जैसे मार्कंडेय जी, मार्कंडेय जी के हाथ में रेखा पड़ी थी और नारद जी ने बताया था कि यह लड़का 20 वर्ष के अंदर मर जाएगा। उनके पिताजी मृकंड जी इस बात को सुन करके बहुत दुखित हुए कि हमारा पुत्र मर जाएगा, तो नारद जी ने उनको बताया, नारद जी से भी कहे उनके पिताजी कोई उपाय बताए जिससे हमारा पुत्र न मरे। उन्होंने बताया कि आप इस बच्चे को भगवान शिव की आराधना में लगाइए, एक महामृत्युंजय स्तोत्र है उसका जप करें। तो बच्चा भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाता था, सेवा करता था और जप करता था। मृत्यु का जब समय आया, पूर्व निर्धारित मृत्यु का समय जब आया, उस समय वो मार्कंडेय जी भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ रहे थे और उनको मारने के लिए जमराज के दूत नहीं आए, डायरेक्ट जमराज आए, भैंसा पर चढ़ करके आए। और जमराज जी दंड धारण करते हैं, दंडा वो बहुत घातक अस्त्र है, जमराज के दंड से कोई बच नहीं सकता। तो वे आए उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन जब जमराज को देखा मार्कंडेय ने, तो वो भगवान शिव को पकड़ करके रोने लगा, कराहने लगा कि त्राह त्राह, हमको बचाइए हमको बचाइए। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के जमराज का ही वध करने के लिए चल दिए। तो अब जमराज के पैर उखड़े भागे हुए बेचारे जान बचाने के लिए, अब कहे को आने जाओ मार्कंडेय को मारने के लिए। और आज तक मार्कंडेय जी अमर हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान नर नारायण का सत्संग करते हैं, भगवान के परम भक्त हैं मार्कंडेय जी। संसार में जैसे लोमस जी, कागभुसुंडी जी चिरंजीवी हैं, उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़े चिरंजीवी हैं, कोटि कोटि वर्षों के हैं। मरने वाले थे तत्काल, लेकिन उनकी आयु ही मृत्यु चली गई, पहुंच चुकी थी मृत्यु, मारने वाला जमराज आ गया था, लेकिन उपस्थित निवर्ते। इसी तरह से इतिहास बताता है, श्रीमद् भागवत बताता है कि अजामिल की मृत्यु होने वाली थी, यहां तक कि जमराज के दूत आ करके उसके गले में रस्सी बांध दिए थे, जमपास बांध दिए थे। जमपास को कोई मनुष्य नहीं काट सकता, उसके सूक्ष्म शरीर में जमपास बना था, बांधा था, सामने नहीं, इस शरीर में नहीं, ये शरीर तो छूटने वाला था, सूक्ष्म शरीर में जमपास बांध चुका था। वो लोग कड़ी तरह से बांध चुके थे कि कहीं फरार न होने पाए, भागने न होने पाए, बांध दिए थे। बांध रहे थे, बड़े विकराल थे, उनकी विकरालता को देख करके अजामिल घबरा गया और सोचा कि हमारे बच्चे को ये लोग न मारे काटे, कहीं नारायण खेल रहा था। तो जोर से बोला, मृत स्वर में, कंठ तो घिरा हुआ था कफ से, बोला नारायण आयो, हे नारायण आओ। इतना कहते ही नारायण के चार पार्षद धमक गए और वो आ गए और आ करके सीधे जमपास को काट दिया। आज तक जमपास को कोई नहीं काटा था, लेकिन उस रस्सी को टुकड़े टुकड़े कर दे, फेंक दिया। जमराज के दूत तो सब पका गए, डर गए, थोड़ा दूर हो गए। भगवान के दूतों ने कहा कि सावधान, यदि तुमने अजामिल को हाथ लगाया तो तुम्हारे मरने का समाचार जमराज को जाएगा, यहां से जो समाचार जाएगा तो जमराज जी जानेंगे कि हमारे तीन पार्षद मर गए वहीं पर अजामिल को लाने में। वो लोग तो हट गए, लगे पूछने, आप लोग कौन हैं, देखने में इतना सुंदर है, इतना महान है, लेकिन काम इतना नीच कर रहे हैं, इस गुंडे का पक्ष ले रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पापी का पक्ष ले रहे हैं। जानते हैं हम लोग कौन है, हम लोग जमराज जी के आदमी हैं, बहुत बड़े व्यक्ति के आदमी हैं हम लोग, और यह काम हम लोग परंपरा से करते रहते हैं, पापियों को नरक में ले जाते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, लेकिन आप लोगों का शरीर बता रहा है कि आप लोग बहुत महान हैं, पर ऐसा नीच काम क्यों कर रहे हैं, पापी का पक्ष क्यों ले रहे हैं। तब भगवान के दूतों ने उनसे पूछा कि यदि आप लोग धर्मराज के सेवक हैं तो धर्म का स्वरूप बता सकते हैं। वे लोग बताए, वो भी तो प्रवीण थे, वेद प्रणीतो धर्म है धर्म स्तर विपर्जय, वेद स्वयं भू साक्षात, ऐसा उन्होंने कहा, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रूपी सुश्रीमत। वो बहुत सिखाए गए तो धड़ाधड़ बोलने लगे धर्म क्या है, वेद ने जो करने के लिए लिखा गया है वो धर्म है, सीधा बोले। वो बहुत दक्ष थे, वेद प्राण ही तो धर्म हो, यह धर्म स्तर पर जो, और वेद के जो विरुद्ध है वो अधर्म है। वेद क्यों प्रमाण है? मान लीजिए भगवान के पार्षद पूछे कि हम वेद को क्यों प्रमाण माने, तो ये कहते अरे वेदो नारायण है साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, तो वही तो नारायण का नाम बोला है, तो क्यों तंग कर रहे हो उसको। वेदो नारायण है साक्षात स्वयं गुरुति सुश्रुमा, हमने भी अपने स्वामी के मुख से, जंगराज जी के मुख से सुना है कि वेद साक्षात भगवान नारायण की वाणी है, अतः नारायण स्वरूप है, हमने ऐसा सुना है। वेदो नारायण है साक्षात, हरे कृष्ण एक बार प्रणाम करके बैठ जाइए। कथा के बीच में सीखना चाहिए, वेद और नारायण है साक्षात। तो मेरा यहां कहने का वक्तव्य यह है कि बिल्कुल जमपास बंध चुका था गले में, वो जमपास गया, जमदूत गए, अजामिल जी गया, और इसके बाद हरिद्वार गया, 15 वर्ष और जिया, और भगवान का भजन करके पार्षद बनकर विमान से गया, गंगा जी में शरीर छोड़, तो आई हुई मृत्यु चली गई थी। तो अभी मैं देख रहा हूं कि देवकी की मृत्यु बिल्कुल निकट है, आसन्न है, लेकिन भगवान की कृपा से बच सकती, पर वसुदेव जी सोच रहे हैं कि बच सकती है। अच्छा, उपस्थितो निवर्तेता निवृत्त पुनरापते, ठीक है अब देवकी को तो बचा लेंगे, ये तो मान लीजिए हो जाए, लेकिन आप ये कैसे सोचते हैं कि पुत्रों के होने के पहले ही कंस मर सकता है, चाहे आपका पुत्र मार सकता है? तब कहते हैं निवृत्त पुनरापते, अभी इतिहास में देखा गया है कि बहुत दूर गई हुई मृत्यु भी आकर के मार देती, जिन लोगों की मृत्यु न, जिनकी मृत्यु न होने का निश्चय हो चुका था, जैसे हिरण्यकश्यपु और नमुचि इत्यादि, हिरण्यकश्यपु निश्चिंत था कि वो मरेगा नहीं, और केवल वही निश्चिंत नहीं था, सारे देवता मान रहे थे कि अब मरेगा नहीं, कभी नहीं मरने वाला। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था, ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए तो उसने मांग किया, आप कृपा कीजिए क्या आप हमको वर देना चाहते हैं, यदि शब्द लगाया, यदि दास्यस अभिमतान वरान में वरदर सब, तो वस्तुभ्यो तद विशिष्ट भ्यो मृत्युर्मा भूत किल प्रभु, आप एक बार दीजिए कि आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो, ये पहला वर मांगा था। वो जानता था कि विश्व में जितनी वस्तुएं हैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई, जितना भी राइफल है या बम है या विष है, धनुष बाण मुगदर गदा परशु, जो कुछ है ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, तो ब्रह्मा जी से कहलवाया और लिखवाया भी होगा, साइन लिया होगा। आप एक कहिए कि आपके द्वारा विनिर्मित किसी भी वस्तु से मेरा वध न हो। अब ब्रह्मा जी क्या करो, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, मेरी किसी भी बनाई हुई वस्तु से आपकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि भगवान तो मेरे बनाए हुए हैं नहीं, अगर वे मार देंगे तो हमारा वर सुरक्षित रहेगा। और इस पर भी संतोष नहीं हुआ हिरण्यकश्यपु को, इतना ही काफी था, लेकिन वो कहता और सुनिए सुनिए सुनिए, कभी कभी मैंने सुना है कि विमान दुर्घटना में व्यक्ति मर जाते हैं आकाश में, आप मुझे वर दीजिए कि आकाश में मेरी मृत्यु न हो। अरे कोई व्यक्ति मरेगा तो या तो भूतल पर या जल में या नभ में मरेगा, तो मांगा आकाश में मेरी मृत्यु न हो, ठीक है जल में मेरी मृत्यु न हो और स्थल पर मेरी मृत्यु न हो। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो मांगता है, वो सुना कि कुछ लोग रात में मर जाते हैं, कुछ दिन में मर जाते हैं, तो कहा कि आप हमको ये वर दीजिए कि रात में मेरी मृत्यु न हो और दिन में मेरी मृत्यु न हो। एक एक वर काफी था अमर होने के लिए, लेकिन फिर भी वर पर वर कन्फर्म पर कन्फर्म करता जा रहा है, ऐसे मेरी मृत्यु न हो न हो न हो, तो दिन में मृत्यु न हो रात में न हो। और फिर कहा सुनिए सुनिए, घर के भीतर मेरी मृत्यु न हो और घर के बाहर मेरी मृत्यु न हो। अरे जब ऊपर नीचे मांग ही चुका तो अब क्या मांगने की जरूरत है। फिर सोचने लगा, अच्छा अभी अभी विष्णु कुछ काल पहले पशु बन करके मेरे भाई का वध कर दिया, सुअर बन करके बराह बन करके मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो ये ध्यान आम में आ गया कि कहीं विष्णु फिर वही ट्रिक न करे। तो वो कहता है ब्रह्मा जी, हे देव आप ऐसी कृपा कीजिए मुझको वर दीजिए किसी पशु से मेरी मृत्यु ना हो, किसी पशु से मेरी मृत्यु ना हो। आप विष्णु चाहे बराह बने चाहे गाय बने भैंस बने कुछ भी बने, हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है किसी पशु से आपकी मृत्यु नहीं होनी। तो ऐसा भी सुना गया कोई कोई मनुष्य के हाथ से मर गया है। पहले वो कहा कि देवताओं से मेरी मृत्यु ना हो इससे मेरी मृत्यु ना हो, तो कहने में मनुष्य का नाम नहीं लिया, तो मनुष्य से बचने के लिए स्पेशल वर मांग रहा है। मनुष्य बहुत ठीक जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान पटक देते, देखिए बुद्धि। देवता लोग ऐसे कभी नहीं करते हैं, ये राक्षस लोग ऐसा करते हैं मनुष्य। तो कहा कि मनुष्य से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। फिर उसको एक भय हुआ स्पेशल कि सुदर्शन चक्र बहुत घातक है और इंद्र का वज्र भी बड़ा घातक है। तो वर मांगा किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, किसी भी अस्त्र शस्त्र से, किसी हथियार से। और फिर कहा किसी भी तरल पदार्थ से मेरी मृत्यु न हो, विष से या एसिड से, जैसे तैसे मेरी मृत्यु न हो। एकदम कंप्लीट हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि और कुछ कहना है? नहीं अब तो ठीक हो गया। ब्रह्मा जी बड़े चतुर है, उन्होंने कहा कि देखो जी तुम जो वर मांगे हो ये बड़े दुर्लभ वर है। तो ब्रह्मा जी एक तरह से वर दे भी रहे हैं और दुर्लभ कह करके उन्होंने कहा कि ये पाओगे नहीं, मरना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं समझा, हिरण्यकश्यपु नहीं समझा, वो समझा कि दुर्लभ वर है फिर भी दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा नहीं मिलेंगे तुमको। ये बात थी। मरना तो है ही तुमको, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा। तो जब श्री भगवान प्रकट हुए, पवकर कमल बरे नख मदभुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यपु तनु भृंगम केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश। तो भगवान ने विचार किया कि हमारा पुत्र ब्रह्मा जो वचन दिया है तो उसके वचन की रक्षा होनी चाहिए। जैसे जैसे ब्रह्मा ने वर दिया है वो सब ठीक रहेगा, फिर भी मार दूंगा। तो भगवान न पशु थे न मनुष्य थे, आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का था, नरसिंह। यही हम लोग गाते भी हैं, नर हरि। नर का अर्थ है मनुष्य और हरि का अर्थ है सिंह, नर हरि। अद्भुत भगवान का अवतार है, ऐसा दो जीव वाला शरीर भगवान कभी ग्रहण नहीं करते हैं, यह एक अद्भुत अवतार हुआ। अपने भक्त की बात रखने के लिए नहीं, के लिए भगवान अवतार लिए। तो उनका चिन्मय शरीर एक ही है, उसमें दो जीव तीन जीव नहीं है, आकार का केवल भेद हो गया, ऊपर मनुष्य का आकार और नीचे सिंह का, नहीं ऊपर सिंह का, ना ऊपर सिंह का, क्योंकि हाथ में सिंह का नख, ऊपर सिंह का नीचे मनुष्य का। ये तो पशु और मनुष्य का वर जीव का त्यों रह गया। और भगवान उस समय हिरण्यकश्यपु का वध किए जिसमें सूर्य आधा डूबा हुआ था और आधा उगा था, न दिन था न रात था, सूर्य को रोक दिया गया, भगवान की इच्छा शक्ति से सूर्य रुक गए। क्या कोई कहेगा न दिन है न रात, और घर के बाहर चौकट पर ले गए, देहली पर, देहली पर, न घर के बाहर था न भीतर था, आधा घर बाहर था आधा भीतर था, और अपने जांघों पर लिपटा लिए, न वो ऊपर था न नीचे था, स्थल पर था ही नहीं, न आकाश में था न जमीन पर था, जल पर होने का तो प्रश्न ही नहीं था, कहीं नहीं था, और आयुध से नहीं मारे, नख से फाड़ दिए छाती को, पेट को फाड़, तो ये आयुध नहीं है, न गीली वस्तु थी न सुखी वस्तु थी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की बातें धरी की धरी रह गई और उपस्थित निवृत्त पुनरापते, निवृत्त अपनी मृत्यु पुनः आपते, निवृत्त हो चुकी थी मृत्यु वास्तव में, वो मरने वाला नहीं था, सभी लोग जानते थे, लेकिन मर गए क्षण भर में, यह है भगवान की शक्ति। तो कंस भी हिरण्यकश्यपु की तरह मर सकता है, यह भाव देवकी बच सकती है, या हो सकता है हमारे पुत्र भी बच जाए, और हुआ यही, और छह पुत्र तो नहीं बच पाए, लेकिन सातवां तो अलक्षित चला गया रोहिणी के गर्भ में, और आठवां तो शान से प्रकट हुआ और पिता की गोद में गोकुल चला गया, और कंस को पता भी नहीं चला, ये सब घटनाएं हुई। तो हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति को मरना पड़ा। इसी तरह से एक असुर था नमुचि, श्रीमद् भागवतम में कथा है, देवासुर संग्राम में वो लड़ रहा था इंद्र से, तो इंद्र भगवान बहुत क्रोध में और मोशन बना करके अपने वज्र को मारे उसके गले पर, वह वज्र जो पर्वतों को विदीर्ण कर देता है वो नमुचि के गले में आया और गले के त्वचा को भी नहीं काट सका, त्वक को भी नहीं काट, और घूम करके गिर गया नीचे। भगवान इंद्र तो इतना घबरा गए, डर गए कि हाय हाय ये क्या हुआ, दधीचि मुनि की तपस्या गई, भगवान का आदेश गया, वज्र विफल हो गया, अब लज्जा के मारे वे वज्र उठा नहीं रहे थे, और वे सोचने लगे कि ये नमुचि तो मेरा वध कर ही देगा निश्चित। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसका नमुचि नाम इसलिए था कि जिसको पकड़ लेता था उसको छोड़ता नहीं था, नमुचि मोचन का अर्थ छोड़ना, जो उसकी पकड़ में आ जाता था फिर बचता नहीं था, इसलिए उसका नाम दिया गया था नमुचि। तो नमुचि पर जब कुछ भी वार नहीं हुआ तो इंद्रदेव थरथर कांपने लगे कि अब तो यह प्रहार करेगा और मुझे मरना पड़ेगा। वज्र की विफलता से उनको बड़ा शोक हो रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई कि हे देवराज, मैंने इसको वर दिया है कि यह किसी भी सूखी वस्तु से या तरल वस्तु से नहीं मरेगा, गीली वस्तु से नहीं मरेगा न सूखी से मरेगा, इसने वर मांगा है, तो आप कोई उपाय सोचिए, ऐसी वस्तु आप देखिए जो सूखा भी नहीं है गीला भी नहीं है, उससे मारिए, आकाशवाणी ने कहा। तो भगवान इंद्र विचार करने लगे ऐसी कौन सी वस्तु है, समुद्र के किनारे युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का जो फेन है गाज है वो दोनों है और दोनों नहीं है, सूखा भी है गीला भी है, गीला नहीं भी है सूखा नहीं है, तो उन्होंने आजमाया, थोड़ा प्रयास किया और हाथ में फेन उठाया, समुद्र का ऐसे फेंक दिया और धड़ाम से गिर करके मर गया, जो वज्र से नहीं मरा वो समुद्र के फेन से मर गया, इतना कोमल फेन, उसको तो फेंकने पर कोई कीड़ा भी नहीं मरता है, लेकिन उतना धुरंधर विकट असुर मर गया। उसको कहते निवृत्त पुनरापते, मृत्यु दूर थी लेकिन चली आई, तो कुछ भी हो सकता है, वसुदेव जी ये सोच रहे हैं, देवकी को बचा लेना है, आगे हो सकता है हमारा पुत्र कंस का वध कर दे या कंस मर जाए, या जैसे भी हो जो भी आगे होगा देखा जाएगा, लेकिन इस समय देवकी को बचाना, तो कैसे आई हुई मृत्यु चली जाती है और गई हुई मृत्यु आ जाती है, इसको एक दृष्टांत द्वारा अपने मन में सोच रहे हैं। अग्नेर जथा दारु विजोग जो गये हो अदृष्ट तोन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतु। जैसे किसी घर में आग लगती है या जंगल में वन में आग लगती है तो कोई निश्चित नहीं रहता है कि कौन वृक्ष जलेगा और कौन बचा रहेगा,
कभी कभी पास का वृक्ष बच जाता है, दूर का वृक्ष जल जाता है, ऐसा देखा गया है। तो अदृष्ट के अलावा, दैव की इच्छा के अलावा वृक्षों का जलना या बचना दूसरे किसी कारण से संभव नहीं है। वैसे होता है जैसे मान लीजिए कहीं आग लगी है जंगल में और उस समय पूर्वी हवा चल रही है, पूर्व से हवा पश्चिम जा रही है, तो आग पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। लेकिन अकस्मात यदि पश्चिमी वायु बहे, पश्चिमी हवा चलना चालू हो जाए, तो जहां तक आग पहुंचे वहां रुक जाएगी और यहां से आग फिर बढ़ेगी और हो सकता है कि बहुत दूर के पूर्व के वृक्षों को जलाना चालू कर दे, ऐसे देखा गया है। तो दैव की इच्छा का कोई पता नहीं है। तो अग्नि का जैसे दारू के साथ, लकड़ी के साथ संजोग और विजोग दैव की इच्छा पर ही निर्भर करता है, कोई ठीक नहीं कब कहां आग लग जाएगी, कब कौन घर जल जाएगा बच जाए, कोई ठीक नहीं रहता। ये सब दैव की इच्छा पर निर्भर है। सब देख ही रहे हैं, सब जगह आग से बचने के लिए प्रयास किया जाता है, फायर विभाग, अग्नि सेवा, उसको फायर सर्विस कहते हैं। अग्नि की सेवा नहीं करनी हो, अग्नि का विरोध करने के लिए वो डिपार्टमेंट है, लेकिन फायर सर्विस कहते हैं। कहीं आग लग जाती है तो अग्नि शामक, अग्नि को बुझाने के लिए सब यंत्र रखे जाते हैं। लेकिन अग्नि कैसे लग जाती है, आग कैसे लग जाती है, कोई ठीक नहीं रहता है। कहीं लग सकती है, कहीं बच सकता है, कोई कहीं जल सकता है। तो इसी तरह से कोई ठीक नहीं है कि कब कहां मर जाएगा। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई जन्म लेकर मर जाता है, कोई ट्रेन दुर्घटना में, कोई रोड दुर्घटना में, कोई कहीं कहीं कहीं, कोई ठीक नहीं है। सारा प्लान वास्तव में ईश्वर के द्वारा आ रहा है, कौन कितना दिन जिएगा, कब मरेगा, कब जिएगा, कब क्या खाएगा, कब क्या पिएगा, कोई ठीक नहीं रहता। ये दृष्टांत देकर कह रहे हैं। तो इस तरह से विचार करके एवं विमृशतम पापम, इस प्रकार से उन्होंने विचार किया कि ठीक है मैं पुत्र देने की प्रतिज्ञा कर लू, जावदात्म निदर्शन, जहां तक अपने ज्ञान काम किया वसुदेव जी ये सोच करके, और उसको अपना अपनी प्रसन्नता दिखाने लगे। जैसे वसुदेव जी को ऐसा लग रहा था कि मन में इनको कोई दुख नहीं है, चाहे देवकी जिए चाहे मर जाए, यह नीति है वास्तव में। एवं विमृशतम पापं जावत दात्म निदर्शनम दर्शय मास वैश्वरी बहु मानपुरः शरम, कंस का बहुत आदर किए, बहुत प्रशंसा किए। वसुदेव जी कहने लगे, कंस जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो करके भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप बहुत महान हैं, धन्य हैं। आप इतने धैर्य रखे, अभी इसको इसका मस्तक काट नहीं दिए, वास्तव में यह आपका बड़प्पन है। इतने धैर्य रखना और सुनना, आप यदि महान नहीं होते तो हमारी बात नहीं सुने होते। ओ तो और सुनने लगा ठीक है, और ये प्रशंसा किए।